हरे कृष्ण। आज दक्ष और शिवा का जो प्रसंग है उसका हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में जो शिवजी का बड़ा अपमान दक्ष कर रहे हैं, इसकी पार्श्वभूमि जैसे हम कल बता रहे थे कि कैसे जब कोई भी संघर्ष होता है, संग्राम होता है, झगड़ा होता है, वो एक बड़े अग्नि के समान होता है। उसकी शुरुआत चिंगारी से होती है और जो चिंगारी कई बार होती है वो एक गलत धारणा। तो कल कैसे धार्मिक जो कार्य करते हैं हम, वो धार्मिक कार्य करने का उद्देश्य क्या है महत्वपूर्ण है। अगर वह उद्देश्य उचित नहीं है तो फिर और उसमें अहंकार आ जाता है, हम अहंकार के लिए करते हैं और फिर उसमें झगड़ा होने लगता है। तो वही यहां पे हुआ है। दक्ष प्रजापति ने बड़े यज्ञ की आयोजना की है और इस यज्ञ की आयोजना में उन्हें विश्व से अलग अलग हस्तियों को बुलाया है, ब्रह्मांड से वास्तव में। तो जो अभी सारे हस्तियां वहां पे आई है तो अभी वह स्वयं यजमान है, वो दक्ष प्रवेश करता है। जब दक्ष प्रवेश करता है तभी क्या होता है, तभी सब उसका स्वागत करते हैं। पर शिवजी जो होते हैं वह कुछ ध्यान नहीं देते उसकी ओर। तो भी एक तरह से यह दक्ष का एक तरह से कह सकते उचित नहीं है। साधारणतः अभी अगर हम किसी के हम कहीं जाते हैं तो फिर हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी वहां पे है वो हमारा स्वागत करे या कुछ तो वचन बोले, मीठे वचन बोले। या फिर हम कहीं गए हैं तो यहाँ ये परिस्थिति थोड़ी अलग है, ये दक्ष का ही यज्ञ है। वास्तव में दक्ष को सबका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उसने यज्ञ के लिए सबको बुलाया हुआ है। पर कैसे होता है कि कोई अभी बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो उनके सारे जो सहयोग होते हैं वो सब अरेंजमेंट कर लेते, योजना कर लेते हैं। और फिर कोई बड़ा नेता होता है, वो जब कार्यक्रम चालू होता है तभी आते हैं। तो भारत में कई बार ऐसे होता है कि अगर जो नेता जितना लेट आए, जितना दूसरों को इंतजार करने का लगा है उतना क्या है, मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, ऐसा भाव होता है। ये अलग होता है। अगर अमेरिका में स्कूल्स में अगर कॉलेजेस में अगर भारत में कैसे होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो जो विद्यार्थी होते हैं क्लास में जाके बैठते हैं और फिर बाद में टीचर क्लास में आते हैं। पर अमेरिका में ऐसी सिस्टम होती है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो टीचर को सबसे पहले जाना पड़ता है और टीचर जाके सब कुछ क्लास को सेटअप कर देते हैं और फिर विद्यार्थी एक एक करके आते रहते हैं। और वहां पे ऐसे भाव है कि सबको समान भाव से देखना है। तो जो विद्यार्थी भी है टीचर को अपने पहले नाम से बुलाते हैं और उतना ही नहीं, वो ऐसे बहुत ही इनफॉर्मल भाव होता है। तो अभी मैं उदाहरण से दे रहा हूं कि हर संस्कृति में हर जगह में अलग अलग भाव से आदान प्रदान होता है। पर साधारणतः अभी दक्ष अगर शिवजी ने यज्ञ आयोजित किया है और शिवजी तभी यजमान है, होस्ट है, और तभी वो दक्ष वहां पे आए हैं तो शिवजी को ये अपेक्षित है कि वो उनका स्वागत करे। यहाँ पे भी एक तरह से अपेक्षित है कि कम से कम अच्छा वो अभी यजमान आ गए हैं तो उनको देखें, उनसे कुछ वचन बोले अच्छी तरह से, उनका स्वागत करें। पर शिवजी ने ऐसे नहीं किया। तो अभी क्या होता है, हर एक व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो व्यक्ति वो कार्य क्यों कर रहा है उसका कोई कारण होता है और वो कारण जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हम वो व्यक्ति को नहीं समझ सकते। पर कैसे होता है कि हमारा मन जो है वह द माइंड टेंड्स टू जंप टू कंक्लूजन्स, कि हमारा जो मन जो है निष्कर्ष पे कूदने का प्रयास करता है। तो ऐसे कहा गया कि द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। कूदता है, अगर कोई बच्चा है कोई बड़ी दीवार पर कूद रहा है वहां से, ए बच्चा कूदो मत तुम गिर जाओगे कुछ लग जाएगा, एक ऐसा कूदना खतरनाक है। शारीरिक रूप पे कूदना थोड़ा खतरनाक है, पर हम जब बौद्धिक स्तर पे निष्कर्षों पे कूद जाते हैं, ये ऐसा कार्य है इसका मतलब इसका विचार ऐसा होगा, ये कार्य इस व्यक्ति ने इसलिए किया है, इस प्रकार के निष्कर्ष पे कूदना ये वास्तव में उचित नहीं है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति कार्य किस लिए कर रहा है, हाँ हम उस व्यक्ति के मन में नहीं देख सकते, तभी एक तरह से जो कार्य है वो अनुचित है। जो कार्य अनुचित है मतलब क्या, वो व्यक्ति जो क्या कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति वास्तव में, अभी शिवजी जो है वो उठ के उन्होंने दक्ष को प्रति यहां पर से बताया है, कुछ वचन भी नहीं बोले और कुछ आदर भी नहीं किया, तो फिर यह अनुचित है, पर ये क्यों किया है। शिवजी जो थे वो भगवान के स्मरण में इतने लीन थे कि वो बाह्य चेतना में उस समय थे ही नहीं, देखा ही नहीं उन्होंने, और भले ही देख भी लिया वो अंदर से भगवान का नमन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, इसीलिए बाह्य रूप से उन्होंने दक्ष को प्रणाम या दक्ष को आदर करने का विचार उनके मन में तभी नहीं आया, तो वो अंतरंग रूप से एक तरह से भगवान के स्मरण में लगे हुए थे। अभी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञेश्वर भगवान, और वह भगवान की स्मृति हो रही है। मान लीजिए अभी हम मंदिर में आते हैं और हम मंदिर में किसी को ग्रीट करते हैं, किसी के सिर लाते हैं, कुछ प्रणाम करते हैं, वो हमारे देखते भी नहीं है तो हमको बुरा लगेगा, पर हम देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। ये मान लीजिए भी प्रवचन चल रहा है, हम आके बैठते हैं प्रवचन में, दूसरे को कुछ हाथ जोड़ते हैं, वो हमारे देखते नहीं है, ठीक है, अभी क्यों नहीं देख रहे। अगर अभी प्रवचन सुन रहे हैं तभी नहीं देख रहे तो बात अलग है, अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं इसे तभी नहीं देख रहे तो बात अलग है, अगर वो हमारी ओर देखते हैं और फिर भी ध्यान नहीं देते तो तभी बात पूरी अलग है, और तभी भी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों हम वो प्रत्युत्तर नहीं कर रहे हैं, उसका भी कारण कल कल किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ हो रहा है, किसी कारण बहुत विचलित है, तो फिर वह समझना जरूरी है। हम देखते चैतन्य चरितामृत में से वर्णन आता है कि एक बार नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को बहुत डांट देते हैं, और जब शिवानंद सेन को डांट देते हैं तो शिवानंद सेन का जो नेफ्यू भतीजा यस जो भतीजा होता है वो श्रीकांत, वह बड़ा विश्वास होता है, शिवानंद सेन भी बड़े व्यक्ति है, नित्यानंद को क्या समझते खुद को, उनको इस तरह से उन्होंने काट दिया, तो वो जो सारे भक्तों का समूह था जो तभी मायापुर से जगन्नाथपुर जा रहा था, तो उसमें वो छोड़ के आगे चले गए। जब वो आगे चले गए अकेले, जब चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर पहुंच गए वो, तो चैतन्य महाप्रभु देखे प्रणाम कर रहे थे। अभी साधारणतः ऐसे उस समय पद्धति थी कि जब प्रणाम करते हैं तो अगर कोई अंगवस्त्र है तो अंगवस्त्र बाजू को रख के फिर प्रणाम करते हैं, तो वो तभी भूल गए और वैसे ही प्रणाम करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे वो भी उनको बोले अंगवस्त्र बाजू को करो, वो शिष्टाचार था उस समय का, पर जैसे बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु बोलो मत, कुछ मत बोलो उनको, क्या बोले उनका मन बड़ा विचलित है। क्या है, कभी कभी हमारा मन अगर उचित होगा उस समय कोई छोटी सी भी गलती निकालता है तो क्या होता है वो और बोझा बन जाता है, क्या है मैं इतने बोझे में तुम इतनी छोटी सी बात क्या कर रहे हो, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, तो अगर दूसरा व्यक्ति कोई गलत कार्य भी कर रहा है क्यों कर रहा है, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझते नहीं है कि पार्श्वभूमि क्या है तो हर एक व्यक्ति एक अपना बोझा लेके चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत टेढ़ा होकर चल रहा है, ले टेढ़ा क्यों चल रहा है, तो पर अगर हम देखते हैं कि वही व्यक्ति एक बड़ा बोझा लेके चल रहा है, अच्छा ये बोझा इतना बड़ा इसलिए टेढ़ा चल रहा है, पर तो क्या होता है शारीरिक रूप से बोझा होगा तो हमको तुरंत दिख जाता है, पर सबके मन में अलग अलग प्रकार का मानसिक बोझा होता है और हमको पता नहीं वो मानसिक बोझा क्या है उनका, कि हम उनके मन में देख नहीं सकते। तो इसीलिए टू नो पीपल्स बैकग्राउंड मीन्स टू नो वॉट इज ऑन देयर बैक एंड वॉट इज अंडर देयर ग्राउंड। हम लोगों की बैकग्राउंड जानना चाहते हैं ना, ये पहले आप क्या करते थे, पहले आप ऐसे क्या है, आप क्या है, तो मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या बोझ है, उनके क्या है, वो समझना है। तो कभी कभी हम अरे एक व्यक्ति पहले ऐसे था, एक ऐसे पहले था, केवल ऐसा कौतूहल के लिए जान सकते हैं, पर हम सब जो पार्श्वभूमि से आ रहे हैं उससे हमारा बर्ताव प्रभावित होता है। तो व्यक्ति के पीछे क्या है, पीठ पे क्या है, हमें पता नहीं है उनके मानसिक स्तर पे, और उनके जमीन के नीचे मतलब क्या है, उनकी धारणाएं क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, यह समझना भी बड़ा मुश्किल है। तो हमें परिस्थिति के अनुसार यह देख के समझना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो अभी समय दे रहे हैं, हॉर्न नहीं बज रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अभी क्या शिवजी ने उनका आदर नहीं किया, तो अभी ये क्या कहें, वो उन्होंने समझ लिया कि शिवजी ने उनको शिष्टाचारी पता नहीं, और ये उन्होंने क्या किया, ये कार्य था और कार्य से एक निष्कर्ष निकाल लिया, और निष्कर्ष केवल वो कार्य के बारे में निकाला, वो व्यक्ति के चरित्र के बारे में निकाल दिया, ये व्यक्ति को शिष्टाचारी पता नहीं है। और यहाँ पे वो तुलना कर रहे हैं कि जो शिवजी जो है ये मरकट लोचना है, उनकी आंखें बंदर जैसी है। अभी जो है किसी व्यक्ति को बंदर से तुलना करना ये एक अपमान के समान है, और बंदर लोच मरकट लोचन आंखें बंदर जैसी है, ये तो बड़ा अपमान की बात हो गई। और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है फिर भी इसने मेरी पुत्री जो है मेरी कन्या जो है उसकी जो आंखें हैं वो एक हिरण के समान थी। तो अभी हिरण की आंखें कई बार एक सौंदर्य के समान मानी जाती, सौंदर्य का प्रतीक माना जाते हैं। तो तुलना कर रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो जोड़ी थी बिल्कुल उचित नहीं थी, शिवजी ने उनका उनका ये अधिकार नहीं था, फिर भी मेरी कन्या से विवाह कर लिया, और भी विवाह भी कर लिया तो भी अभी जो उनका पद है कि वो अभी मेरे एक तरह से मेरे जमाई बन गए, मुझसे एक पीढ़ी छोटे हो गए वो, तो फिर उस पद के अनुसार मैं ऐसा आदर करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। तो कई बार ऐसे होता है, अभी ये क्या कर रहे हैं, जब इस तरह से तुलना कर रहे हैं, वो एक तरह से वहां पे वो शिवजी को नीचा दिखाना चाहते हैं, पर शिवजी को नीचा दिखा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वो वास्तव में शिवजी और सती में एक तरह से एक कला करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए उचित है ही नहीं, अभी विवाह हो गया, अभी क्या करने वाले हैं, ऐसे बोलने की जरूरत क्या है। कई बार ऐसे होता है कि विवाह में समस्या आती है, वो समस्या पति पत्नी के कारण नहीं होती है, ये पति के रिश्तेदार होते हैं, पत्नी के रिश्तेदार होते हैं, ये ऐसा बोल देते हैं, वो वैसा बोल देते हैं, और फिर क्या होता है, ये दोनों के बीच में और 10-12 लोग होते हैं, और उसके कारण समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। तो हम जब दूसरे संबंध जोड़ते हैं, हम जब भी संबंध जोड़ते हैं तो एक तो संबंध नहीं जुड़ता है, उन व्यक्ति से संबंध देते हैं उनसे भी संबंध जोड़ जाता है, पर फिर भी क्या ये जो इस दूसरे जो दो व्यक्तियों का संबंध है उसमें तीसरे चौथे व्यक्ति भी आ जाते हैं, पर बाकी सब व्यक्तियों का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि ये संबंध को और स्थिर कैसे बनाए, ये संबंध में और मदद कैसे करें, ये संबंध कि ये संबंध में कलह कैसे लाए। तो अभी यहाँ पे ये शिवजी के प्रति अपमान कर रहे हैं, और अपमान कर रहे, वो सोच रहे हैं कि शिवजी ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उनको अपमान कर रहा हूं। पिछले जो बताते हैं वो कि मैं ये अज्ञान या अहंकार के या ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहा हूं, मैं जो उचित शिष्टाचार है, सुसंस्कृत लोग ऐसा शिष्टाचार करते हैं, उस शिष्टाचार के बारे में बता रहा हूं। वास्तव में जो हम इस तरह से बोल रहे हैं, बिल्कुल उनकी धारणा, दक्ष की धारणा पूरी गलत हो गई है, वो अहंकारी है और उसे कि ये शिवजी अहंकारी है। जिस तरह से हमारी धारणाएं होती है उसके अनुसार हम दुनिया को देखते हैं, और जो हमारी संकल्पनाएं हैं उसके अनुसार हम लोग सोचते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और कई बार ऐसे निष्कर्ष गलत हो गए। मैं जब अभी अमेरिका जाने लग गया हूँ तो फिर अमेरिका में बहुत लोगों के पास कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते को अंग्रेजी में मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जो मानव का सबसे अच्छा मित्र है। तो इतने सारे लोगों के पास कुत्ते होते हैं। जब पहली बार मैं अमेरिका में गया तो मैं देखा कि कई भक्तों के पास भी कुत्ते, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। एक प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य है और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत एडवांस भी है, पर उनके साथ उनका भी एक कुत्ता, और हमेशा उनके साथ कुत्ता रहता है, जहां भी जाते हैं वो कुत्ता उनके साथ जाता है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर हम थोड़े करीब आ गए तो मैंने उनको एक बार पूछा, लेकिन अभी आपको एक कुत्ते क्यों जरूरत पड़ती है? हम सोचते कि ये कुत्ता तो एक भौतिक आसक्ति है, कुत्ते से आसक्त क्यों होना है, सब आसक्ति छोड़नी है। तो ये विचार मेरे मन में चल रहा था, कुत्ते क्या जरूरत है आपको? पर तभी मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि जब पूछा मैंने तभी पता चला कि वो बोले कि उनको फिट्स आते हैं। फिट्स आपको अटैक आ जाता है, व्यक्ति बेहोश गिर जाता है। तो अमेरिका में कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं, उनको सीजर थेरेपी डॉग्स बोलते हैं। जब व्यक्ति को सीजर आता है, व्यक्ति को ऐसे फिट आता है, तो वो कुत्ता समझ जाता है फिट आ गया है। तो फिर जब व्यक्ति गिरने वाला होता है तो कुत्ता बराबर पीछे आके व्यक्ति को बचा ले, व्यक्ति को गिरने से बचाता है, और व्यक्ति को फिर धीरे से वो नीचे रखता है और फिर भौंकता है या फिर कुछ करता है ताकि लोगों को ध्यान लगा सके और लोगों की मदद कर सके। या फिर तो एक्चुअली जो है सीजर थेरेपी डॉग, जो सीजर डॉग्स कहते हैं उनको, वो बहुत महंगे कुत्ते होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फिर वो बताए कि ये कुत्ते ने अभी तक दो बार मेरी जान बचाई है। रास्ते में चल रहा था मैं और क्या होगा, अचानक फिट आ गए तो गिर गया। तो क्या होता, अभी रास्ते में गिर गया तो कोई गाड़ी ऊपर से चली जाएगी, तो वो लोगों को भी पता होता है कुत्ता अचानक भौंकने लग गया। वो कुत्ता भी एक अलग प्रकार का डॉग होता, कुत्ता होता है, उसमें बैज भी होता है कि ये सीजर डॉग है, तो फिर लोग समझ जाते हैं। तो फिर तुरंत क्या होता है, ऐसा कुत्ता अगर कोई भौंकने लग गया तो तुरंत वो लोग देखते हैं तो कोई 911 को फोन कर देगा और तभी इमरजेंसी आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगा और फिर उस व्यक्ति को बचा लेंगे। तो ये एक, ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो हाँ, हम किसी व्यक्ति को भक्त कर कुत्ते कहते, क्या है भक्त है, भक्ति नहीं करते, भगवान से आसक्ति जाए कुत्ते की आसक्ति करा ले, पर जो सत्य है पूरा अलग ही है। तो इसीलिए क्या है, हम हमारी संकल्पना के अनुसार लोगों को देखते हैं, और जब हम हमारी संकल्पना से लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं व्यक्ति ये ऐसा है, पर वो वैसा होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, सत्य कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये सत्य है कि बहुत से लोग कुत्तों से बहुत आसक्त भी है, पर वही सत्य हर जगह पे होगा ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमें अंग्रेजी में कहते हैं वी शुड गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब कि अगर हमें सत्य पता नहीं है तो हमें दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए, सकारात्मक विचार करना चाहिए। जैसे क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, अगर कोई बैट्समैन आउट है या आउट नहीं है तो फिर ये आउट है, रिप्ले देखते इधर से देखते उधर से देखते कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलते हैं नॉट आउट है। तो ये बैट्समैन को हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। तो अगर कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और वो साधारणतः अच्छे व्यक्ति है, अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, करते हैं, अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, और किसी समय ऐसे हो जाता है कि वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो उचित नहीं है, तो कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अलग कार्य कर रहे, तो उस समय ऐसे ही है कि तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, उनको उनको जज करना है, उनको भी निंदा करना है। हमें क्या करना है उस समय, सावधान, हमें खुद को सतर्क बनाना है। क्या सत्य कुछ और हो सकता है, सत्य क्या है मुझे पता नहीं है, इसीलिए मुझे वास्तव में ऐसे तरह से कार्य करना है कि मैं दूसरों के बारे में अपने ही विचारधाराओं से निष्कर्ष निकाल। तो शिवजी के प्रति ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया, और यह ऐसा है कि एक चीज है किसी व्यक्ति की निंदा करना, वो हम कभी कभी किसी की निंदा कर सकते हैं, पर निंदा भी करनी है तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ में है तो अकेले में बात करो। सबके सामने निंदा करना मतलब क्या है, वो व्यक्ति की आप निंदा ही नहीं कर रहे, वो व्यक्ति की बदनामी भी कर रहे हो। एक है क्रिटिसिज्म और दूसरा है डिफेमेशन। निंदा मतलब तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और कभी कभी लोग गलती करते हैं और गलती बताना जरूरी है, पर दुनिया के सामने अगर गलती बताते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति की निंदा, व्यक्ति की गलती सुधारने की आपकी कितनी इच्छा है या व्यक्ति को बदनाम करने की इच्छा है वो पता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी की निंदा करनी है तो अकेले में निंदा करो, और किसी के साथ सराहना करनी है तो सबके सामने सराहना करो। तो क्या है, इससे क्या होता है, हम सबका समूह है, हम सबका समाज है, उसमें सकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक भावनाएं आती हैं, सब एक दूसरे के प्रति सकारात्मक आदरपूर्व अच्छे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, भले ही दक्ष को लगता है कि यीशु जी ने मेरा आदर नहीं किया है, पर इस तरह से सबके सामने यीशु जी का अपमान करने की क्या जरूरत है। और यहां तक कि अभी अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये जोड़ी थी ये उचित नहीं थी, ये वो कहते हैं पर मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मेरी बेटी की इससे विवाह करें, पर ये ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया, इसका मुझे विवाह करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी का भी निंदा कर रहे हो, तो क्या होता है, अभी ब्रह्मा जी तो कुछ भी नहीं किया, ब्रह्मा जी ने उनका आदर भी किया है, उनका स्वागत भी किया है, पर फिर भी उनके प्रति भी वो निंदा करने लग जाते हैं। जो इस तरह से जब हम एक चीज को लेके, वो एक चीज एक नहीं रहती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, वो और बढ़ती जाती है। जब इस तरह से बढ़ती जाती है तो छोटी चीज, अभी उन्होंने शिव जी का निंदा की, फिर ब्रह्मा जी की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा की, और उसके आगे क्या किया, ओके किसी ने आपका आदर नहीं किया है, ठीक है, वो कितनी बड़ी बात है, वो नहीं किया, पर क्या कर ले? उसके क्या, वो क्या करते हैं, शिव जी को शाप दे बाद में, देखिए क्योंकि तुमको कुछ संस्कृति पता ही नहीं है, तुमको शीलता है ही नहीं, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि भविष्य में जो भी यज्ञ होंगे उन यज्ञों में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अभी ठीक है, मान लीजिए किसी को आदर नहीं किया है, तो ऐसे उस छोटी चीज को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं आप? किसी को अभी शाप, तो आदर नहीं किया उसके अंदर शाप दे देना, अभी ये देखने का भी प्रयास नहीं कर रहे कि आदर क्यों नहीं किया है, और शाप देने के लिए थोड़ी योग्य है, और शाप भी किसको दे रहे, शिव जी जैसे महान हस्ती को, ये बिल्कुल जो है बहुत ही, शिव जी से भले ही गलती क्यों ना हो गई हो, उससे दक्ष ने और बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो क्या है कि जब हम किसी चीज से बड़े आसक्त होते हैं, तो जब आसक्ति आ जाती है तो उस चीज के प्रति हमारी भावनाएं बहुत बढ़ जाती है, और जब हमारी भावनाएं बहुत बढ़ जाती है तो भावनाएं हमारे बुद्धि को बाजू रखे देती है, और फिर वो भावनाओं के वश में हम बहुत कुछ कार्य कर देते हैं जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवद्गीता के 10वें अध्याय में अब बुद्धि की परिभाषा बोलते हैं, इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बुद्धि का मतलब है कि चीजों को अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है, इसके लिए ये छोड़ सकते हैं पर इसके लिए ये छोड़ नहीं सकते, इस तरह से चीजों को एक पूरी तरह से समतोल से देखना अच्छी तरह से, वह बुद्धि जो है, पर जब आसक्ति होती है तो वो बुद्धि जो होती है चली जाती है, और वही इनके साथ हो गया। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो जब आसक्ति होती है वैसे श्रृंखला बढ़ जाती है, इसलिए बुद्धि का नाश हो जाता है। ये अलग अलग परिस्थिति हम देखते हैं कि किसी को, व्यक्ति को किसी एक चीज से बड़ी आसक्ति है, किसी को क्रिकेट से बड़ी आसक्ति है, तो अभी वो अपने फेवरेट मैच है और वो हार गए, उनकी फेवरेट टीम अगर हार गई तो व्यक्ति कभी कभी अपना टीवी तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में से होता है कि कभी कई बार ऐसे हुआ है, कुछ साल पहले श्रीलंका जब वर्ल्ड कप में हार गई थी तो कई श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी ने आत्महत्या कर दी। क्रिकेट मैच हार गए ठीक है, वो प्लेयर्स ने आत्महत्या नहीं की, आपको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? पर आसक्ति ऐसी होती है वो। कुछ मैंने पहले कुछ भारत और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मैच था, फाइनल था, ऐसा लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, बहुत अच्छे फॉर्म में था, भारत हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। तो तभी बाद में एक लड़का मुझे आगे बता रहा था कि मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पाया, भारत ऐसे कैसे हार गई वो मैच। बोले वो प्लेयर सो गए हो गए, आप क्यों नहीं सो पा रहे? तो वो मैच जो था शायद इंग्लैंड में हुआ था, वो युवक था भारत में था। पर क्या है, आसक्ति इतनी है कि जो वो प्रपोर्शन है, मात्रा है, उसको भूल जाए। खेल है वो एक मनोरंजन के लिए है, पर इतनी आसक्ति अगर बढ़ जाती है तो फिर छोटी चीज को बहुत बुरी बना, बहुत बड़ी बना देते हैं वो। जो व्यक्ति खुद के अहंकार में बड़े मग्न रहते हैं, कोई व्यक्ति अपने अहंकार का बहुत, उनको अहंकार से बड़े आसक्त होते हैं वो। सब अहंकार तो सब में होता है, पर अहंकार से बड़ी आसक्ति होती है तो फिर थोड़ा सा अपमान भी सहन नहीं होता है। अगर कोई डिक्टेटर, बड़ा राजा वगैरह, उसको थोड़ा सा भी आदर अगर नहीं करते हैं तो वो किसी को बहुत बड़ी सजा भी दे सकता है, मौत की भी सजा दे सकता है। छोटा सा गलती हो गई है, पर क्या है, उसका अहंकार इतना है कैसे कार्य करता है। तो जब आसक्ति होती है, अटैचमेंट डिस्टॉर्ट्स अवर सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। इतनी आसक्ति होती है, हमारी देखने की जो वृत्ति है वो हम उचित नहीं रहते हैं, और उसके कारण छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं। अभी शिव जी को श्राप दे देते हैं तो शिव जी तो शांत रहते हैं, वो चले जाते हैं वहां से, पर शिव जी के अनुयायी होते हैं वो प्रतिशाप देने लगते हैं। नंदी फिर क्या होता है, और नंदी भी गुस्सा हो जाते हैं, और नंदी के न केवल इनको श्राप देते हैं, दक्ष को श्राप देते हैं, उससे तुम सब ब्राह्मण, तुम सब शांत रहे, तुम सबने जो है शिवजी का अपमान हुआ, शिवजी का श्राप दिया गया, तुमने कुछ बोला नहीं, इसीलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं। और जब ये हो जाता है तो जो ब्राह्मण होते, ब्राह्मण गुस्सा हो जाते, ब्राह्मण भी श्राप देने लगते, तो एक दूसरे के प्रति श्राप देने की श्रृंखला बढ़ जाती है। हम शाम को जो हम कली के बारे में 2 दिनों से कली और प्रदर्शित की चर्चा के बारे में हम विषय के विश्लेषण कर रहे हैं, तो कलयुग का एक अच्छा लक्षण भी है, लोगों को श्राप देने की शक्ति नहीं है।
लोग बोल सकते हैं पर कुछ बोलने से कुछ होता नहीं है। ये तो कलयुग में हमारे मन इंद्रिया इतनी अनियंत्रित है कि छोटे छोटे चीजों से अगर कोई व्यक्ति को श्राप देने की शक्ति तो श्राप दे देगा वो।
तो अभी श्राप देने की श्रृंखला बढ़ जाती है, और पूरा जो यज्ञ है, यज्ञ के से ध्यान सबका निकल जाता है, और लोग वहां पे है झगड़े पे उतर जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज में लोग जाते हैं, कभी कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेला में हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए, पर तभी क्या होता है, वो कुंभ के समय सबसे पहले स्नान कौन करेगा, वो बड़े आदर का बात होता है, तो वो किसको पहले से पदवी दिया जाएगा, वो पहले स्नान करेगा, दूसरा स्नान करेगा, ये लोग 10 लोग पहले स्नान करेंगे, ऐसे होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस समय कौन पहले स्नान करेगा, वो मुहूर्त आ रहा है, मुहूर्त में पहले स्नान करने के लिए लोग झगड़ा करने लगते हैं, और झगड़ा करने लगते हैं, और वो मुहूर्त आ गया, मंगलमय मुहूर्त है, उसको भूल जाते हैं और झगड़ा करते हुए अमंगल कर देते हैं, और वो नदी तो पास में है, मुहूर्त आ रहा है जा रहा है, झगड़ा करने में समय चला जाता है और मुहूर्त चला भी जाता है। तो ठीक है, अभी स्नान करना है, स्नान हमें दुनिया को दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा हूं, या खुद के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम कोई चीज में हमारे अहंकार को बहुत ला देते हैं तो फिर उस चीज का उद्देश्य न केवल भूल जाते हैं, बल्कि उस चीज के उद्देश्य के हम विपरीत चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो उद्देश्य है उसको याद रखना है। उद्देश्य को भूल जाते हैं तो फिर हमारे जो मन है हमें पूरी तरह से गुमराह कर सकता है। यहां पे ये दक्ष प्रजापति आगे इस तरह से जब शाप देते हैं, शिवजी वहां से चले जाते हैं, पर उन दोनों के बीच में इससे एक जो है स्प्लिट हो जाता है, एक विभाजन हो जाता है, क्योंकि सबके सामने शिवजी का उन्हें अपमान कर दिया है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो सती होती है, जो शिवजी की पत्नी और दक्ष की पुत्री, वह बीच में फंस जाती है। और उसकी क्या परिस्थिति होती है, वह बड़ी दयनीय परिस्थिति होती है उसके बाद में, उसके बारे में चर्चा हम भविष्य के प्रवचनों में करेंगे। आज कैन आई समराइज, सवाल है आप देख सकते हैं। तो मैंने चर्चा की किस तरह से जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह दूसरों के कार्यों को अहंकार के कारण हो रहा है ऐसे मान लेता है। देखा कैसे यहाँ पे शिवजी ने जब वो ध्यान में थे इसलिए उन्होंने दक्ष का आदर नहीं किया, पर दक्ष सोचने लगे कि ये सुसंस्कृति पता नहीं है, इतने अहंकारी है, अपना पद पता नहीं है, इसलिए मेरा इतने अपमान किया है। और उन्होंने शिवजी का अपमान किया तुलना करके कि मेरी कन्या जो है वह तो मृग आक्षा वाली है, पर यह तो मरकट लोचन है, बंदर जैसी आंखें उनकी। तो न केवल उनकी निंदा की पर उनका अपमान भी किया। और हमारे प्रवचन का मूल पॉइंट यह था कि कैसे हमें दूसरों के बर्ताव के को देखकर निष्कर्षों पे कूदना नहीं है, कि हम जो कार्य देखते हैं किसी का तो कार्य क्यों कर रहे हैं यह हमें पूछताछ करके समझना है, न कि हमारे मन के धारणाओं से उस पर फैसला कर लेना है। तो क्या है, हमारी मन की धारणाएं सीमित होती है, हम दूसरों की परिस्थिति को जानते नहीं हैं, हम दूसरों के मनस्थिति को जानते नहीं हैं, दूसरों के मन पे क्या बोझा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है वो पता नहीं है। जैसे चैतन्य महापुरुष श्रीकांत जी उनको अच्छी तरह से प्रणाम नहीं कर रहे थे, उसको बात को बढ़ाओ मत। चैतन्य महाप्रभु संवेदनशील थे, नम्र थे। तो हमें एक दूसरों को हमारे आदान प्रदान में गिव अदर द बेनिफिट ऑफ डाउट, दूसरों के बात अगर कर पाता समझ में नहीं आता है तो सकारात्मक कोई कारण होगा ऐसे देखो, नकारात्मक कारण देखने की जरूरत नहीं है। और देखा कि कैसे कि यहाँ पे हम अपनी धारणाओं के अनुसार किसी का कुत्ते को देखते हैं, किसी को कुत्ते का देखते तो ये कुत्ते से आ सकते होते, पर वैसे हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, कि कुत्ता उनके ट्रीटमेंट के लिए जो सीजर डॉग कुत्ता है वो पता नहीं है हमें। तो जब हम समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता नहीं है, मेरा ज्ञान सीमित है, तो दूसरों के हम जज नहीं करेंगे इतनी आसानी से, और हम अच्छी तरह से हमारे संबंध को जो अच्छी तरह चल रहे स्वाभाविक भाव से उसको खामखा उसमें व्यक्ति नहीं लाएंगे। भले किसी की निंदा करनी है तो निंदा हमें कुछ गलती की है सही बताना है उनको, तो वो प्राइवेटली बताना है अकेले में, सराहना सबके सामने करनी है। अगर निंदा सबके सामने कर देते हैं तो क्या है, तो वो न केवल वो निंदा हो जाती है वो बदनामी हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं छोटी चीज जो थी, ठीक है उनका आदर नहीं किया, पर उनकी आसक्ति दक्ष के अपने सम्मान के प्रति आसक्ति इतनी थी कि उसके कारण वह क्रोधित हो गए और न केवल शिवजी की निंदा की, ब्रह्मा जी की अप्रत्यक्ष निंदा कर दी, और बाद में शिवजी को शाप भी दे दिया। और वो शाप के कारण एक शाप दूसरा शाप एक प्रतिशाप होते जाए, और पूरा यज्ञ था वह उसका कुछ भी वो यज्ञ हुआ ही नहीं, यज्ञ के ध्यान से सब लोग निकल यज्ञ से ध्यान सबको निकल गया, पदभ्रष्ट हो गए सब लोग। उसी तरह से अगर हम छोटी हमारे उद्देश्य को भूल जाते हैं तो हमारी भावनाएं हैं, हमारी भ्रांत धारणाएं हमें गुमराह कर सकती है, पर अगर हमारे उद्देश्य को हम केंद्र में रखते हैं तो भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत किसने कुछ किया है, तो उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमारे कार्य में हमारे सेवा में हमारे धर्म में हम आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरह से जो समस्याएं हैं, गलत फहमियां हैं या गलत कार्य भी है, वो गलतियों को ज्यादा बढ़ाने की जगह पे हम उसको कम रख के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें अग्रसर रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई सवाल है?
ओके,
तो यह दक्ष यहाँ पे ब्राह्मण थे तो क्षत्रिय बन गए, और फिर तभी आश्चर्य छठे स्कंद बताया है कि वो मैं हम सब यहाँ के मंत्र गाए का प्रार्थना की और फिर भगवान का दर्शन मिला उनको, तो ऐसे पात्र कैसे बन गए। वास्तव में जो है देवताओं का वर्ण एग्जैक्टली क्या है थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम देखते हैं देवता जो अगर हम इंद्र को देखते हैं, इंद्र स्पष्ट रूप से क्षत्रिय है, राजा है, इंद्र युद्ध करते हैं, शस्त्र रखते हैं। अभी हम कहते हैं हम ब्रह्मास्त्र या अस्त्र बोलते हैं, पर ब्रह्मा जी बहुत कम युद्ध करते हैं। वो ब्रह्मास्त्र जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मन परम ब्रह्म है उससे संबंधित अस्त्र है। तो इसलिए तो ब्रह्मा जी साधारण युद्ध नहीं करते, ब्रह्मा जी देवताओं में ब्राह्मण मान जाते। अभी दक्ष जो है वह जहां तक मुझे पता है उनको क्षत्रिय माना जाएगा कि वो प्रजा उत्पत्ति कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। साधारणतः ब्राह्मण यज्ञ का आयोजन करते हैं, यज्ञ करना ये उसके लिए बहुत सी सामग्री लगती है, बहुत सा पैसा लगता है, बहुत कुछ चीजें लगती हैं। तो ब्राह्मण का अपना छोटा यज्ञ अपने घर में कर सकते हैं, पर जो बड़ा यज्ञ अगर करना है तो साधारणतः वो ब्राह्मण नहीं करते, वो क्षत्रिय करते हैं, क्योंकि जो सामग्री उनके पास होती है और ब्राह्मण फिर उस यज्ञ को संभालने में आते। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणों को शाप दंडी ने क्यों दिया, क्योंकि वो उनके उपस्थिति में दक्ष ने शाप दिया था। मान लीजिए ऐसा था कि वो सब ब्राह्मण दक्ष की सेवा कर रहे थे, दक्ष के लिए वो पुरोहित जैसे थे वो, और फिर जो दक्ष शाप दे रहा था तो वो ब्राह्मण दक्ष के मार्गदर्शक या गुरु ऐसे उन्हें उस भूमिका में समझे थे, उन्हें उसको रोकना चाहिए था, नंदी को ऐसा लगा, इसे पर उन्होंने ऐसे किया नहीं। तो जहां तक मुझे पता है कि दक्ष जो है वह ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव गॉड्स में से एक है, जैसे जो ऐसे देवता है इस जगत में जो कार्य करते हैं, उनके कार्य है उत्पत्ति करना, प्रजा को बढ़ाना, तो फिर वह क्षत्रिय के भाव में ही हो गए। पर इसके बाद में ऐसे बताया जाता है कि यह एक यज्ञ होता है, उसके बाद में अगला यज्ञ का योजना होती है, उस समय सती अपना शरीर त्याग देती है, उसके बाद में पूरा वीरभद्र आते हैं, शिवजी उनको करते हैं और वह दक्ष का वध हो जाता है, फिर दक्ष को पुनः दूसरा शरीर मिलता है और तभी दक्ष जो है शिवजी से माफी मांगते हैं। वो जो जब शिवजी से माफी मांगते हैं, शिवजी इतने दयामय होते हैं माफ कर देते हैं, और फिर उसके बाद में क्योंकि वो अपराध से मुक्त हो जाते हैं, वो अहंकार थोड़ा कम हो जाता है, फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तभी वो उनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये जो अपराधास्पद भाव जो होता है उससे वो माफी मांग के उसकी सजा प्राप्त करके और माफी मांग के वो उस भाव से इस अहंकार से एक तरह से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए तभी बाद में उनको वो भगवान का दर्शन मिलता है। यस
अहंकार के प्रति जो आसक्ति है उससे बुद्धि काम नहीं करता, तो कैसे हमें इससे बाहर आना है? अहंकार के प्रति हमारा आसक्ति है तो इससे कैसे हमें बाहर आना
है? अगर अहंकार के प्रति आसक्ति है तो उसे बाहर कैसे आते हैं? गज जनार्तिहानि निज योषिताम् निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता। गोपी गीत में बताया गया है कि हे भगवान, गोपियां भगवान बोल रहे हैं कि निज जनस्मय, अगर आपके भक्तों में कुछ अहंकार हो जाता है तो ध्वंसनस्मिता, कि आपका जो स्मित है, आपकी जो हंसी है, आपका जो सौंदर्य है, वह आपके भक्तों के अहंकार का नाश कर देता है। मतलब क्या है इसका? कि हमको अहंकार में कुछ आनंद मिलता है, इतना लोग मेरा आदर कर रहे हैं, इतना लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, तो अभी अहंकार से जितना आनंद मिलता है उतना दुख भी होता है, अरे ये मेरा आदर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है मेरा आदर, उसे दुख भी हो जाता है। पर तो ये जो सारी भावनाएं हैं जिससे अहंकार से जो भी सुख मिलता है, गोपियां बता रही हैं कि अगर हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, भगवान के सौंदर्य को देखते हैं, भगवान के भगवान के गुणों में खुद को लीन कर देते हैं, उनके 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 चिंतन में खुद को मग्न कर देते हैं, तो फिर उसमें जो दिव्य आनंद मिलता है वो इतना उचित उच्च है कि ये अहंकार के जो आनंद मिलता है वो तुच्छ लगने लगता है। तो ये हमें भक्ति में लगने का प्रयास करना चाहिए, और खास करके भक्ति के उन अंगों में जिसमें हमको रुचि मिलती है, किसी को कीर्तन में रुचि मिलती होगी, किसी को कथा में रुचि होगी, किसी को विग्रहों की पूजा में रुचि होगी, किसी को मूर्ति सृष्टि में रुचि होगी, तो ऐसे कार्यों में हम रुचि में जो हमें जिस कार्य में रुचि लगती है उसमें लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उसी में बहुत रुचि लगने लगती है। साधारणतया हम अपेक्षा करते हैं कि अगर मैं कुछ सेवा करूं तो कोई उसका कोई मुझे उसकी सराहना करे, कोई उसका गुणगान करे, तो हम ऐसे नहीं है कि सेवा हमेशा शुद्ध भाव से ही करेंगे, हम बुगड़ू से भी बजाएंगे या तो ग्रंथों का वितरण करें तो हमको लगेगा कि यार मैं इतने ग्रंथ वितरण किए लोग तो मेरा गुणगान करें, हाँ वो एक उद्देश्य हो सकता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम वो सेवा करते रहते हैं तो वो जो उद्देश्य हम देखते हैं कि ये सेवा में इतना आनंद है कि लोगों जब वो गुणगान करते हैं उससे जो आनंद है वो थोड़ा सा ही आनंद है, इतना नहीं है वो। हम विग्रहों की पूजा करते हैं, विग्रहों को ड्रेस करते हैं, डेकोरेट करते हैं, बाद में अगर इतना अच्छा ड्रेसिंग किया है हमें अच्छा लगता है, सौभाग्य वो एक मानवीय स्तर पर अच्छा वो अच्छा लगता है, पर अगर हम देखते हैं अरे मैं इतना अच्छा ड्रेसिंग किसी कुछ सराहना की नहीं तो उसके लिए करेंगे तो वो सराहना थोड़ी समय की रहती, पर अगर हम सोचते हैं कि मैं भगवान का ड्रेस कर रहा हूँ वो एक घंटा डेढ़ घंटा जो भगवान के साथ हूँ, भगवान के सानिध्य में भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो फिर उसी में आनंद मिलने लगता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा अहंकार है, ये भगवान की सेवा है, तो हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा अभी करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम अगर सिर्फ अहंकार के लिए सेवा करते रहते, अहंकार के लिए कुछ कार्य करते, तो फिर अगर हमको कोई प्रतिसाद नहीं मिलेगा लोगों से, कोई गुणगान नहीं करेगा तो फिर बहुत बहुत हम मायूस हो जाएंगे। पर ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन होता है, ठीक है मुझे थोड़ा मेरा अहंकार मुझे ऐसा भाव है कि सब में तो भाव होता है कि मुझे थोड़ा गुणगान करना चाहिए। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वे बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, तो जब प्रभुपाद जी उसे मंदिर में आए थे तो प्रभुपाद जी दर्शन करने जा रहे थे, तो वो कीर्तन कर रहे थे तभी, और जब जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, नाइस कीर्तन, अच्छा कीर्तन करते आप, तो उनको एक तरह से बड़ा आनंद हुआ। प्रभुपाद जी गुरु है से पूछ लेता हूँ मैं, प्रभुपाद जी पर कभी कभी गर्व होता है, समटाइम्स आई फील प्राउड, तो कंधे पे हाथ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, उसमें क्या गलत है, और प्रभुपाद चले गए आगे, अहंकार में क्या गलत है, अरे गर्व तो क्या है, ये तो बहुत बुरा है, ये तो षडरूपियों में से एक है, उसमें क्या गलत है, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तव में क्या है कि जो अहंकार है वो अभी जो वो हम सब में है, अगर मुझे गुणगान मेरा गुणगान चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सराहना करें, लोग मेरे प्रशंसा करें, मेरा गुणगान हो, तो यह इच्छा अपने आप जाने वाली नहीं है, यह क्या है, अगर मैं वो सराहना भक्तों के समूह में नहीं पाऊंगा तो मैं अभक्तों के समूह में दान प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, और उसके लिए मुझे अभक्ति के कार्य करने पड़ेंगे, भक्ति छोड़ के कार्य करने पड़ेंगे, तो अगर वो सराहना चाहिए मुझे तो बेहतर है कि वो सराहना भक्तों के संग में प्राप्त करूँ, तो मुझे वो गुणगान चाहिए भक्तों के संग प्राप्त करूँ, तो क्या हो कम से कम उसके कारण मैं भक्ति तो अच्छी करूँगा इस तरह से। और तो क्या होता है कि हमें ऐसे कभी हम सोचते हैं कि अगर मैं अच्छी सेवा करूँगा तो मैं उससे मुझे गर्व हो जाएगा, मैं अच्छा कीर्तन करूंगा तो गर्व हो जाएगा मुझे, मैं अच्छा प्रवचन दूंगा तो गर्व हो जाएगा मुझे, तो अभी ऐसा सोचना कि मुझे गर्व हो जाएगा यही गर्व का लक्षण है, क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि मुझे गर्व हो जाएगा उसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि अभी मुझ में गर्व नहीं है और यह गर्व का लक्षण है। सोचना कि मैं गर्व से मुक्त हूं क्या है, यह गर्व का लक्षण है। क्या हम सब में गर्व पहले से है? तो सिर्फ वो गर्व दिखाने के लिए कुछ कारण नहीं है। मैं कुछ बड़ी सेवा करूंगा तो फिर हाँ मैंने इतनी बड़ी सेवा की, प्रशंसा होनी चाहिए मेरी। कुछ किया ही नहीं तो कौन प्रशंसा करने वाला है? तो ऐसे नहीं है कि हमें गर्व नहीं है, सब में गर्व है। और द क्योर फॉर प्राइड इज नॉट सप्रेशन ऑफ टैलेंट, द क्योर फॉर प्राइड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट। अगर हमें कुछ प्रतिभा है, वो प्रतिभा हमें भगवान ने दी है, तो वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई अच्छा कीर्तन कर सकता है, तो सोचता है कि मैं कीर्तन करूंगा तो मैं गर्व हो जाएगा मुझे, तो फिर इसलिए कीर्तन नहीं करता है। पर फिर क्या होगा, दूसरा कोई अच्छा कीर्तन करेगा, कीर्तन तो चालू ही रहना चाहिए, और फिर दूसरा कोई अच्छा कीर्तन करेगा और बाकी भक्त उसका उस भक्त का गुणगान करेंगे, इतना अच्छा कीर्तन करता है, तो फिर ये भक्त के मन में ईर्ष्या आ जाएगी, इसका इतना गुणगान क्यों हो रहा है। तो कोई इस भक्त को बोलेगा कि ये कितना अच्छा कीर्तन करता है, कितना प्रसाद खाता है, देखा क्या आपने? तो फिर हम क्या करेंगे, उनको घेर दे, उनकी अवहेलना करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, वो गर्व है, वो अपने आप चला नहीं जाएगा। वो गर्व है, वो गर्व को दबाएंगे तो वो दूसरे के ईर्ष्या के प्रति आ जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, कीर्तन करना, कीर्तन अच्छा कर, भगवान ने दी है शक्ति कीर्तन करने की, तो कीर्तन करो। मैंने कथा करने की सीख दी, शक्ति दी है तो कथा करो, थोड़ा उससे भगवान लोग गुणगान करेंगे, थोड़ा आनंद मिलेगा उससे। पर धीरे धीरे हमको भी समझ जाएगा कि यह है, इसमें जो आनंद है वो इतना आनंद नहीं है, भगवान के स्मरण में ज्यादा आनंद है। कि दो सराहना करते हैं कुछ समय के लिए उसका आनंद रहता है, पर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उसका आनंद बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान के स्मरण लग जाओ, तो भगवान के शरण में आनंद होने लगे। इसलिए कुछ भी हो जाए सेवा करते रहे, और सेवा करते हुए जो हमारी, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, पहले ऐसा हो सकता है कि मुझे सराहना चाहिए, गुणगान चाहिए, पर धीरे धीरे मुझे भगवान का स्मरण चाहिए, मुझे भगवान के प्रति आकर्षण चाहिए जिससे कि उनका स्मरण और आसानी से लगे, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। तो इस भाव से हम धीरे धीरे उस, जब भगवान में हम के स्मरण में लग जाएंगे तो ये जो अहंकार है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
आप बोल रहे थे कि भक्तों का मन समझना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि बाहर के जो संबंध वो अच्छे रहते हैं, ऐसे अनुभव है कि बाहर भौतिक लोग हैं वो मन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन भक्तों के बीच में समझना उनके मन को या मुश्किल होता है कि ये कुछ डिवोशनल सर्विस दूसरा रिलीजन है या उनका संघर्ष क्या है, या
क्या ऐसा है कि अभक्तों में लोग एक दूसरे का मन अच्छे से समझ लेते हैं, भक्तों में हम मन समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसे है क्या? ऐसे है तो क्यों है? अभी ऐसे जरूरी नहीं है कि अभक्तों में गलतफहमी नहीं होती है या उसमें संघर्ष नहीं होते, भौतिक जगत में सब जगह संघर्ष होते हैं। पर ऐसे हो सकता है कि कभी कभी भक्तों में गलतफहमियां ज्यादा बढ़ सकती हैं अभक्तों की तुलना में। इसका कारण यह है कि हम सब कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाह रहे हैं और हम कुछ कुछ मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सबसे अपेक्षा होती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। भौतिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अपेक्षाएं होती है, पर ऐसे नहीं है कि वो सब से अपेक्षा करते हैं कि तुम सबको एक स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन जीना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम सब की ऐसे एक अपेक्षा होती है, हम सबके मन में एक संकल्पना होती है कि भक्त कैसे होना चाहिए। और अभी ये संकल्पना जो है कुछ तरह से, एक तरह शास्त्रों से आई है, एक तरह से हम जिस जिन भक्तों के संग में रहे उनसे आई है, या ये हमारे मन से, हमारे विचारधारा से भी आई है। पर ये संकल्पना फिर हम दूसरों पे डालते हैं, और जो भी भक्त उस तरह से नहीं होता है उनको हम बुरा कहने लगते हैं, तुम सही ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो फिर ये जो होता है, ये कई बार भक्तों में बहुत जजमेंटल एटीट्यूड हो जाता है। जजमेंटल एटीट्यूड मतलब कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सब देखने लगते हैं तो हम पता है ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और फिर उससे हम एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो हाँ, इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि भक्तों में कार्य जो होते हैं, भक्तों में संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो जहां तक हो सके हमें खुद का जो जजमेंटल एटीट्यूड है हम कम से कम कर सकते हैं कि ठीक है, ये दूसरा, ये मुझे लगता है भक्त ने ऐसे करना चाहिए पर ये ऐसे कर रहे, ये क्यों कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, पर मैं कुछ नकारात्मक उस पर नहीं बोलूंगा उसके बारे में। क्या होता है कि एक है कार्य, दूसरा है उस कार्य का उद्देश्य, और तीसरा है उस व्यक्ति का चरित्र। तो अभी यहां पे शिवजी ने क्या किया, दक्ष ने क्या किया, एक कार्य को देखा, उसका उद्देश्य क्या था, ये मेरा अपमान करना, इनको दूसरों का आदर कैसे करना ये पता नहीं, और उससे क्या है, ये इनको सुसंस्कृत संस्कृति है ही नहीं, चरित्र है ही नहीं, शीलवान है ही नहीं, ऐसे बताने लगते। तो वह तीसरे स्तर पर चले जाते हैं कि व्यक्ति के चरित्र पे हम एक आंच डालने लगते हैं, तो वो बहुत समस्या आ जाती है उससे। तो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है, तो ये अच्छा है कि हम स्पष्टीकरण मांगे, नम्रता से पूछे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, और अगर स्पष्टीकरण मिल जाता है तो फिर काफी हद तक हमें समझ जाएगा। क्या होता है कि वी शुड टॉक विथ ईच अदर, नॉट टॉक अबाउट ईच अदर। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो उनसे जाके नम्रता से पूछो कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं मुझे। पर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति देखता है, व्यक्ति तीसरे व्यक्ति बोलता है अरे इसने ऐसे किया, दूसरे व्यक्ति चौथी व्यक्ति बोलता है, और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति ने वो क्यों किया है पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हम एक शायद भक्त एक दूसरे का मन को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम समझने का प्रयास नहीं करते। हम सोचते हैं कि मुझे शास्त्र पता है, शास्त्र के अनुसार ये सही है, ये गलत है, और ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है मतलब ये ऐसा है, अगर ऐसे कर रहा है तो ये माया में है। हो सकता है वो माया में, या हो सकता है कि हम माया में हैं, कि हम सोच रहे कि वो माया में है, हमें पता नहीं है। तो अगर हम प्रयास करते हैं कि व्यक्ति है, अगर अभी क्या है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे बहुत हमारे करीब के हैं और उनके साथ बार बार सेवा कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है पूछ लीजिए, तो हर बार वो मन में खटकते रहेगा ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते। तो किसी को हम दूर से जानते हैं और इतना उसे महत्व नहीं है, तो फिर वो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है मुझे पता नहीं है, अगर कोई मौका मिल गया तो पूछ लूंगा। तो हमें कितना जरूरी है किसी के मन को जानना, वह भी वो जरूरी है हमको देखना। और एक और चीज़ है कि हम सब बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से भी आते हैं, अलग पार्श्वभूमियों से आते हैं, तो इसीलिए लोगों के मन में क्या चल रहा है पता नहीं होता है। पर साधारणतया हम अगर प्रयास करते हैं, अगर हम नॉन जजमेंटली मतलब दूसरों पे हम कुछ जजमेंट नहीं करते, दूसरों पे हम उसकी निंदा के भाव से हम नहीं होते, सिर्फ लोगों सुनने के तैयार होते, ये गलत है, ये सही है, नहीं ठीक है, तुमने ऐसे किया क्यों किया, तुम बताओ मुझे, और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कई बार भक्तों में एक दूसरे को समझने की इच्छा बहुत कम होती है, एक दूसरे को समझाने की इच्छा बहुत होती है, तुम कर रहे गलत हो, ये ऐसे मत करो, ऐसे करो, और इसने ऐसा किया क्यों वो समझो ना पहले, वो समझने के लिए किसी की रुचि होती ही नहीं है। तो जब ऐसे होता है ना, तो फिर हाँ भक्तों में से एक बड़ा दरार जैसे आ जाता है, और फिर गलतफहमियां बढ़ जाती है। Does that answer your question? Yes, sir.
मन के कार्य के बारे में बताने
वाले
कब
बताने? ओके, तो मन कार्य कैसे करता है ये तो बड़ा विषय था। एक्चुअली जब दक्ष इसकी निंदा करते हैं, दक्ष सती की दुर्लक्ष करते हैं, उससे सती बहुत दुखी हो जाती है, उस संपर्क में बताने वाला था विस्तार से, पर महत्वपूर्ण चीज है मन का कार्य कैसे करता है। इसमें दो चीजें हैं कि मन भावनाओं से बहुत प्रेरित हो जाता है, प्रेरित या उत्तेजित हो जाता है। द माइंड इज अ क्रिएचर ऑफ फीलिंग्स एंड द माइंड चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये दो मन के लक्षण है कि भावनाओं से बहुत उत्तेजित हो जाता है और जो भी परिस्थिति में सबसे आसान मार्ग क्या है वो निकाल लेता है। इन दोनों के कारण क्या होता है, मन हमारे स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में, भगवान के बारे में कई जगह गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। तो ये मन को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के उपमा है दिए जा सकते हैं, पर एक साधारण उपमा जो हम दे सकते हैं कि मन हम सबको अलग अलग प्रकार की कहानियां बता रहा होता है। हम जीवन को खुद जीवन को वास्तव में अनुभव नहीं करते, हम जीवन को अनुभव करते हैं मन के कमेंट्री के साथ। मान लीजिए अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी क्रिकेट मैच चल रहा होता है, कई बार क्रिकेट मैच होता है कमेंट्री होती है। तो अभी कमेंट्री का उद्देश्य यह होता है कि वो क्रिकेट मैच को क्या हो रहा है वो और समझे और उसमें और रस आए। तो अगर मान लीजिए एक टीम हार रही है और उसमें एक बैट्समैन फिर बहुत अच्छे से बैटिंग करने लगता है और वो टीम अभी जीतने के मार्ग पे आ जाती है, और तभी कमेंटेटर कभी कभी क्या होता है कोई मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा है तो कमेंटेटर कुछ और ही बात करने लगता है, तो कमेंटेटर अपने बातों में लगे रहता है और यहाँ पे मैच में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ वो मैच के बारे में बता ही नहीं रहे। तो हमारा मन कभी ऐसे होता है हम कार्य एक कर रहे हैं पर मन कमेंट्री दूसरा दे रहा है, तो अरे इसने ऐसे किया, वो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और खास करके मन कमेंट्री देने में बड़ा निपुण बन जाता है जब हम जप करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है जप को हम भूल जाते हैं। पर क्या है कि मन जो भी घटना हो रही है उस पर कॉमेंट्री देते रहता है। तो एक हो सकता है कि वो कॉमेंट्री जो घट रहा जो हो रहा है उससे हमें दूर ले जाती है, ये एक है। दूसरा है कि मन जो कमेंट्री दे रहा है, कहानी बता रहा है, वह तो जो मैच हो रहा है, मैच पहले बोरिंग था पर अभी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है उस मैच में, पर एक कमेंटेटर अपनी दुनिया में है और वो मैच के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। तो वैसे हम जीवन में जो घट रहा है उसके वो ध्यान ही नहीं दे पाते। पर उससे भी खतरनाक हो सकता है ये कि जो हो रहा है मन उसका उल्टा हमें बताता है। तो कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है अपनी टीम को बचाने के मार्ग पे, पर वो कमेंटर बोलने लगता है कि ये बैटिंग तो अच्छा कर रहा है पर एक शॉट गलत मार देगा आउट हो जाएगा, ये टीम हार जाएगी उसके बाद। अभी ये शॉट मारा उसने, ये सिक्स पे गया, ये सिक्सर मारा पर अगर थोड़ा सा गलती हो जाता तो आउट हो जाता था ये। तो अभी वो जो भी खेलता है बोलता है अरे अभी आउट होने वाला है और आउट हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, वो मैच एक तरह से चल रही है पर कमेंट्री दूसरी तरह से चल रही है। साधारण कैसे होता है कि क्रिकेट मैच यहाँ पे होती है, कमेंटेटर वो ग्राउंड के बाहर बैठे होते हैं और प्रेक्षकगण जो होते हैं वो तो शायद वो स्टेडियम में हो गए या दुनिया भर में होते। तो मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थिति है कि जो वो कमेंटेटर जो कमेंट्री दे रहा है वो न केवल प्रेक्षकगण सुन रहे वो क्रिकेटर भी सुन रहे, तो ये बैटिंग कर रहा है अच्छी तरह से ये पर वो कमेंट्री दे रहा है आउट होने वाला है और ये बैट्समैन सुनता है आउट होने वाला, आउट होने वाला। तो क्या होगा, उससे वो बैट्समैन का भी बल्लेबाज का भी जो उत्साह है हतोत्साहित हो जाएगा। तो क्या उसी तरह से क्या होता है हमारे जीवन में, हम जो भी कर रहे हैं मन उस पर कॉमेंट्री देते रहता है, अरे ये ऐसे हो गया, ऐसे किया, ऐसे क्या फायदा होने वाला है। तो मन जब कॉमेंट्री देते रहता है उससे क्या होता है कि कई बार हम जो कार्य कर सकते हैं वह भी नहीं करते, हतोत्साहित हो जाते हैं, जो करना जरूरी नहीं है वो भी कर देते कि मन के प्रभाव के कारण। तो मन एक कमेंटेटर या एक स्टोरी टेलर है, और कोई भी कुछ कुछ ऐसी कथा बताते हैं कि वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो अरे बताया क्या, मैं इधर गया था और तभी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और जब कथा बोलने लगते ना ऐसी कथा बोलने लगते कि सुनने वाले सब कुछ भूल जाते हैं, यहां तक भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है सही कथा या गलत कथा है। ऐसा होता है कुछ कथा करने वाले लोग होते तो वो ऐसा होता है कि वो कथा को और रुचि करने के लिए उसे झूठ बोल देते, कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलते ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है, बता देते वैसे। तो क्या होता है कि जब मन कथा बोलने लगता है, अधिकांश लोग कृष्ण कथा नहीं बोलता है, अपनी कथा बोलते रहता है, और उसको हम देख के सुनने लगते हैं, तो फिर हम गुमराह हो जाते हैं। तो जब हम समझते हैं कि जब मन कुछ बता रहा है तो हमें क्या करना है, कभी अभी जो परिस्थिति है उस पे जोर देना है। तो कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो मन के जो कहानी बता रहा है, द रियलिटी एंड द माइंड स्टोरी अबाउट रियलिटी, इसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। तो जब कई बार चिंता होने लगती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, वो होता वो, क्या करूँगा मैं। कोई व्यक्ति नौकर अपने ऑफिस में जाता है और बॉस कुछ थोड़ा अजीब दृष्टि से देखता है उसको, तो व्यक्ति सोचने लगा, बॉस ने ऐसा क्यों देखा मुझे, शायद बॉस मुझे फायर करने वाला है, ये फायर कर देगा तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर पैसे कैसे कमाऊँगा मैं, पैसे नहीं कमाऊँगा तो अभी मेरे घर का कर्जा है, घर का कर्जा कैसे निकालूंगा, घर का कर्जा नहीं निकालूंगा तो क्या होगा, ये घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे तो रास्ते पर रहना पड़ेगा मुझे, रास्ते पर रहूँगा तो भी अरे इतनी ठंडी होगी कैसे रहूँगा, अभी वो एसी में एसी के कारण ठंडी लग रही है और बड़ा उसको लगता है अरे बाहर ठंडी में क्या होगा मेरा। तो मन ने अपनी कहानी चालू कर दी है। तो इसीलिए मन की कहानी से हमको रुकना है। तो मैं एक एक्रोनिम यूज करता हूँ, फियर, FEAR। इससे मन जो कहानियां बोलने लगता है उससे हम प्रतिकार कर सकते हैं। एफ इज फोकस। फोकस मीन्स वॉट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। अरे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है, अभी क्या समस्या है, अरे अगर मैं नौकरी चली जाएगी तो ये हो जाएगा, अभी समस्या क्या है, अरे मेरे बॉस ने ऐसे देखा मेरी ओर, अच्छा अभी समस्या क्या है, अच्छा उसने ऐसे देखा तो क्यों देखा, ठीक है अगर ऐसे देखा है तो अगर जरूरी है तो अगर पूछ लो, नहीं तो फिर अपने काम में लग जाओ। तो अभी समस्या क्या है, मैं आज की समस्या हम आज हल कर सकते हैं, पर मन आज की समस्याओं पे सारे भूत की समस्या डाल देता है, सारे भविष्य की समस्या डाल देता है। अगर मुझे 10 किलो वजन उठाना है तो उठा सकता हूँ शायद मैं, पर कोई 10 किलो के 10 सूटकेस डाल देता है मेरे हाथ, तो मैं उसको हिला भी नहीं पाऊंगा। तो क्या होता है, आज की समस्या हमारे पास होती है पर मन उस पर पूर्व की समस्या डाल देता है, भविष्य की समस्या डाल देता है। तो इसीलिए फोकस, व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम राइट, असली समस्या अभी की समस्या क्या है। तो ई इज एंगेज। एंगेज मतलब व्हाट कैन आई डू अबाउट इट राइट नाउ, अभी मैं क्या कर सकता हूं। तो उससे क्या होता है, हम वर्तमान में आ जाते हैं, अरे बॉस ने ऐसे किया तो क्या होगा, नहीं अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरा अभी मुझे काम दिया है, वो काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, वो काम अच्छी तरह से करूँगा, तो यही सकारात्मक कार्य है जिससे मैं वो मुझे भविष्य में होना तो उसको टाल सकता हूँ। तो एंगेज, एंगेज कि अभी कार्य में लग जाओ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। मन हमें मोहित कैसे करता है, भविष्य में या भूत में लेके जाकर। तो वर्तमान, ये दो सवाल पूछेंगे कि फोकस और एंगेज, इससे हम वर्तमान में वापस आते हैं, अभी समस्या क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूं। और फिर ए है अराइज। अराइज मतलब कि समझो, ऊपर उठो, ऊपर उठो मतलब समझो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा विनाश नहीं होता, जिन्हें समस्या आएगी समस्या जाएगी, मैं अविनाशी हूं। वह जब हम खुद को आध्यात्मिक समझ लेते हैं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान सब चीज के नियंत्रक है, जब इस तरह से हमारी चेतना हमारी परिस्थिति से ऊपर उठा लेते हैं, खुद के आत्मा आध्यात्मिक सर्व पहचान से, उससे तो शांति देखिए, ठीक है समस्या है पर इसका मुझ पर प्रभाव नहीं होने वाला है, परिस्थिति में है। और फिर आर है रिलीज। रिलीज मतलब छोड़ दो, जो चीजों में हमारा नियंत्रण नहीं है उसको छोड़ दो। ई एंगेज मतलब जो मैं कर सकता हूं, मैं अभी कर रहा हूं, पर अभी होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ठीक है छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर हम विचार करेंगे तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। पर बेहतर है कि हम समझे कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है वो भगवान के नियंत्रण में है, वो भगवान में सब छोड़ देता हूं मैं। तो लेट गो, रिलीज। फिर छोड़ देंगे। भगवान आपकी जो योजना है, आप जो करना चाहते हो करो, मेरी क्षमता से मैं ये करने वाला हूँ। तो हम उस तरह से छोड़ देते हैं, तो सारे दुनिया का जो बोझा आता है ना, भूत में ये हो गया, भविष्य में ये हो जाएगा, ठीक है वो सारे सूटकेस निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये भविष्य में जब समस्या आएगी तब देखेंगे, जब अगर समस्या आएगी तब भगवान बताए मार्गदर्शन देंगे कैसे करना है। तो रिलीज इस तरह से अगर हम करेंगे तो बेसिकली मन जो कमेंट्री कर रहा है और सत्य जो है उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, और जो सत्य है जो अभी की परिस्थिति है वास्तव में उस पर हम कार्य कर सकते हैं। स्टॉप हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। Thank you.